नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तंत्राचार में। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त तंत्राचार्य, मेरा नाम है शून्य। दोस्तों मैं ऐसे में देख रहा था, लोगों के बीच बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि तंत्र क्या चीज़ है। इसके चक्कर में वो गूगल पर कई चीज़ें सर्च भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, जिन्हें उन्हें तंत्र का सही मायने नहीं मिल पाता और वो भटक जाते हैं। दोस्तों मेरे पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान है वो मैं चाहता हूँ आपके साथ मैं साझा करूँ, ताकि आप सब समझ सकें कि तंत्र विज्ञान क्या चीज़ है। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का सब्जेक्ट है, एपिसोड है तंत्र। तंत्र क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी जो मुझे है वो मैं आपको दूंगा। तंत्र परंपरा से जुड़ा अग्रम ग्रंथ है। तंत्र शब्द का अर्थ बहुत विस्तृत है। तंत्र परंपरा एक हिंदू एवं बौद्ध परंपरा तो है ही, जैन धर्म, सिख धर्म, तिब्बत की बोन परंपरा, दाओ परंपरा तथा जापान की शिंतो परंपरा में पाई जाती है। भारतीय परंपरा में किसी भी व्यवस्थित ग्रंथ, सिद्धांत, विधि, उपकरण, तकनीक या कार्य प्रणाली को भी तंत्र कहते हैं। हिंदू परंपरा में तंत्र मुख्यतः शाक्य संप्रदाय से जुड़ा है, उसके बाद शैव संप्रदाय से और कुछ सीमा तक वैष्णव परंपरा से। शैव परंपरा में तंत्र ग्रंथों के वक्ता साधारणतः शिवजी होते। बौद्ध धर्म में वज्रायन संप्रदाय अपने तंत्र संबंधी विचारों, कर्मकांडों और साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। तंत्र का शाब्दिक उद्भव इस प्रकार माना जाता है, तनोति त्रयाति तंत्र, जिससे अभिप्राय है तनना, विस्तार, फैलाव। इस प्रकार से त्राण होना तंत्र है। हिंदू, बौद्ध तथा जैन दर्शनों में तंत्र परंपराएं मिलती हैं। यहाँ पर तंत्र साधना से अभिप्राय गुहा या गूढ़ साधनाओं से किया जाता रहा है। तंत्रों को वेदों के काल के बाद की रचना माना जाता है, जिसका विकास प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य के आसपास हुआ। साहित्यिक रूप में जिस प्रकार पुराण ग्रंथ मध्ययुग की दार्शनिक धार्मिक रचनाएं माने जाते हैं, उसी प्रकार तंत्रों में प्राचीन आख्यान, कथानक आदि का समावेश होता है। अपनी विषय वस्तु की दृष्टि से धर्म, दर्शन, सृष्टि रचना, शास्त्र, प्राचीन विज्ञान आदि के इंसाइक्लोपीडिया भी कहे जा सकते हैं। यूरोपीय विद्वानों ने अपने उपनिवेशवादी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए तंत्र को गूढ़ साधना या सांप्रदायिक कर्मकांड बताकर भटकाने की कोशिश की। वैसे तो तंत्र ग्रंथों की संख्या में हजार है, किंतु मुख्य तंत्र 64 कहे गए हैं। तंत्र का प्रभाव विस स्तर का है, इसका प्रमाण हिंदू, बौद्ध, जैन, तिब्बती आदि धर्मों की तंत्र साधना के ग्रंथ हैं। भारत में प्राचीन काल से ही बंगाल, बिहार और राजस्थान तंत्र के गण रहे। यह शास्त्र तीन भागों में विभक्त है, आगम, यामल और मुख्य तंत्र। वारही तंत्र के अनुसार इसमें सृष्टि, प्रलय, देवताओं की पूजा, सब कार्यों की साधना, पुनर्रचना, षटकर्म साधना और चार प्रकार के ध्यान योगों का वर्णन हो, उसे आगम कहते हैं। इसमें सतित्व, ज्योतिषि, नित्य क्रिय, कर्म, सूत्र, वर्ण भेद और युग धर्म का वर्णन हो, उसे यामल कहते हैं। और जिसमें सृष्टि, लट, मंत्र निर्णय, देवताओं के संस्थान, यंत्र निर्णय, तीर्थ, आश्रम, धर्म, कल्प, ज्योतिष संस्थान, व्रत कथा, शौच और अशौच, स्त्री पुरुष लक्षण, राजधर्म, दान धर्म, युवा धर्म, व्यवहार तथा आध्यात्मिक विषयों का वर्णन हो, वो तंत्र कहलाता है। इस शास्त्र का सिद्धांत है कि कलयुग में वैदिक मंत्रों, जपों और यज्ञों आदि का कोई फल नहीं होता। इस युग में सभी प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए तंत्र शास्त्र में वर्णित मंत्रों और उपायों आदि से ही सहायता मिलती है। इस शास्त्र के सिद्धांत बहुत गुप्त रखे जाते हैं और इसकी शिक्षा लेने के लिए मनुष्य को पहले दीक्षित होना पड़ता है या दीक्षित होना पड़ता है। आजकल प्रायः मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि के लिए तथा अन्य प्रकार की सिद्धियों की साधना के लिए तंत्रोक्त मंत्रों और क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। यह शास्त्र प्रधानता शाक्तों का ही है और इसके मंत्र प्रायः अर्थहीन और एकाक्षरी हुआ करते हैं, जैसे रीम क्लीम श्रीम स्थीम शूम क्रूम आदि। तांत्रिकों का पंचाक्रम जैसे मध्य मांस मत्स्य मुद्रा और मैथुन और चक्र पूजा प्रसिद्ध है। तांत्रिक सब देवताओं का पूजन करते हैं पर उनकी पूजा का विधान सबसे भिन्न और स्वतंत्र होता है। चक्र पूजा तथा अन्य अनेक पूजाओं में तांत्रिक लोग मध्य मांस और मत्स्य का बहुत अधिक व्यवहार करते और उनका पूजन करते। तो दोस्तों, तंत्रों का इतिहास के बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है कि यद्यपि अथर्ववेद संहिता में मारण मोहन उच्चाटन और वशीकरण आदि का वर्णन और विधान है, तथापि आधुनिक तंत्र का उससे कोई संबंध नहीं है। कुछ लोगों को विश्वास है कि कनिष्क के समय में और उसके उपरांत भारत में आधुनिक तंत्र का प्रचार हुआ। चीनी यात्री फाहियान और हुनसांग ने अपने लेखों में इस शास्त्र का कोई उल्लेख नहीं किया है। यद्यपि निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि तंत्र का प्रचार कब से हुआ, पर इसमें संदेह नहीं है कि यह शास्त्र शायद ईसवी चौथी पाँचवीं शताब्दी से अधिक पुराना नहीं रहा होगा। हिंदुओं की देखा देखी बौद्धों ने भी तंत्र का प्रचार और तत्व संबंधी अनेक ग्रंथ बने। हिंदू तांत्रिक उन्हें उपतंत्र कहते हैं। इनका अधिक प्रचार तिब्बत तथा चीन में। वाराही तंत्र में यह भी लिखा है कि जैमिनी वाराही तंत्र में यह भी लिखा है कि जैमिन कपिल नारद गर्ग पुलत्स भृगु शुक्र बृहस्पति आदि ऋषियों ने भी उपतंत्रों की रचना की। तंत्र के परिचय के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। व्याकरण शास्त्र के अनुसार तंत्र शब्द तन धातु से बना है जिसका अर्थ विस्तार है। शैव सिद्धांत के कायिक आगम में इसका अर्थ किया गया है तत्तेन्त विस्तारतित्य ज्ञानम अनेन्य इति तंत्र। वह शास्त्र जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाता है। तंत्र की निरुक्ति तन और त्रय, तन यानी विस्तार करना और त्रय यानी रक्षा करना, इन दोनों धातुओं के योग सिद्धि होती। इसका तात्पर्य यह है कि तंत्र अपने समग्र अर्थ में ज्ञान का विस्तार करने के साथ उस पर आचरण करने वाले का त्राण यानी रक्षा भी करता है। तंत्र शास्त्र का एक नाम आगम शास्त्र भी है। इस विषय में कहा गया कि आगमात शिव वक्तांत गतम च गिरीज मुखम सम्मत वासुदेवेन आगमः इति कथ्यते। वाचास्पति मिश्र ने योग भाष्य की तत्व वैशरादी व्याख्या में आगम शब्द का अर्थ करते हुए लिखा है कि जिससे अद्भुत यानी अलौकिक कल्याण और निःश्रेष्ठ यानी मोक्ष के उपाय बुद्धि में आते हैं वो आगम कहलाता है। शास्त्रों के एक अन्य स्वरूप को निगम कहा जाता है। निगम के अंतर्गत वेद पुराण उपनिषद आदि आते हैं। इसमें ज्ञान कर्म और उपासना आदि के विषय में बताया गया है, इसलिए वेद शास्त्रों को निगम कहते हैं। वह स्वरूप को व्यवहार में उतारने वाले उपायों का रूप जो शास्त्र बतलाता है उसे आगम कहते हैं। तंत्र अथवा आगम में व्यवहार पक्ष ही मुख्य है। तंत्र क्रियाओं का और अनुष्ठान पर बल देते हैं। वाराही तंत्र में इस शास्त्र के जो सात लक्षण बताए गए हैं उनमें व्यवहार ही मुख्य है। ये सात लक्षण इस प्रकार हैं: सृष्टि प्रत्यय देवार्चन सर्व साधन यानी सिद्धियां प्राप्त करने के उपाय पुरुषचरण यानी मारण मोहन उच्चाटन आदि क्रियाएँ षटकर्म यानी शांति वशीकरण स्तंभन विद्वेषण उच्चाटन और मारण के साधन तथा सातवां और आखिरी ध्यान यानी ईश के रूप में एकाग्र तल्लीन मन से चिंतन। तंत्र का सामान्य अर्थ है विधि या उपाय विधि या उपाय कोई सिद्धांत नहीं, सिद्धांतों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, विग्रह और विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन विधि के संबंध में कोई मतभेद नहीं। डूबने से बचने के लिए तैराकी आनी पड़ेगी, बिजली चाहे तो कोयले पानी के अणु का रूपांतरण करना ही पड़ेगा, दौड़ने के लिए पांव आगे बढ़ाने ही पड़ेंगे, पर्वत चढ़ना है तो ऊंचाइयों की एक तरफ कदम बढ़ाए बिना कोई चारा नहीं। यह क्रियाएं विधि कहलाती है। तंत्र अथवा आगम व्यवहार पक्ष ही मुख्य है। तंत्र की दृष्टि में शरीर प्रधान निमित्त है, उसके बिना चेतना के उच्च शिखरों तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी कारण से तंत्र का तात्पर्य तन के माध्यम से आत्मा का त्राण या अपने आप का उद्धार भी कहा जा सकता है। यह अर्थ एक सीमा तक ही सही है। वास्तव में तंत्र साधना में शरीर मन और काया कलेवर के सूक्ष्मतम स्तरों का सम्मानित उपयोग होता है। यह अवश्य सत्य है कि तंत्र शरीर को भी उतना ही महत्व देता है जितना कि मन बुद्धि और चित्त को। कर्मकांड और पूजा उपासना के तरीकों में सभी धर्म कर्मकांड और पूजा उपासना के तरीके सभी धर्मों में अलग अलग हैं, पर तंत्र के सब में संबंध में सब एकमत। सभी धर्मों का मानना है कि मानव के भीतर अनंत ऊर्जा छिपी हुई है, उसका 5-7% हिस्सा ही कार्य में आता है, शेष भाग बिना उपयोग के ही पड़ा रहता है। सभी धर्म संप्रदाय इस बात को एकमत होकर स्वीकार करते हैं व अपने हिसाब से उस भाग का मार्ग भी बताते हैं। उन धर्म संप्रदायों के अनुयायी अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाने के लिए प्रायः एक समान विधियां ही काम में लाते हैं, जिसमें जब ध्यान एकाग्रता का अभ्यास और शरीरगत ऊर्जा का सघन उपयोग शामिल होता है। यही तंत्र का प्रतिपाद्य है। तंत्रोक्त मतानुसार मंत्रों के द्वारा यंत्र के माध्यम से भगवान की उपासना की जाती है। विषय को स्पष्ट रखने के लिए तंत्र शास्त्र भले ही विषय को स्पष्ट रखने के लिए तंत्र शास्त्र भले ही कहीं सिद्धांतों की बात करते हों, अन्यथा आगम शास्त्रों का 3/4 भाग विधियों का ही उपदेश करता हो, तंत्र के सभी शिव और पार्वती के संवाद के अंतर्गत ही प्रकट है। तंत्र के सभी ग्रंथ शिव और पार्वती के संवाद के अंतर्गत ही प्रकट है। देवी पार्वती प्रश्न करती हैं और शिव उनका उत्तर देते हुए विधि का उपदेश देते हैं। अधिकांशता प्रश्न समस्या प्रधान ही है। सिद्धांत के संबंध में कोई प्रश्न पूछा गया हो तो भी शिव उसका उत्तर कुछ शब्दों में देने के उपरांत विधि का ही वर्णन करते हैं। आगम शास्त्रों के अनुसार करना ही जानना है। यह कोई जानना ज्ञान की परिभाषा में नहीं आता। जब तक कुछ किया नहीं जाता, साधना में प्रवेश नहीं होता, तब तक कोई उत्तर या समाधान नहीं है। तंत्रों की विषय वस्तु जैसा मैं बता चुका हूँ, ज्ञान या दर्शन, योग, कर्मकांड, विशिष्ट साधनाएं, पद्धति एवं सामाजिक आचार विचार के नियम, संख्या तथा वेदांत अद्वैत विचारों दोनों का प्रभाव तंत्र ग्रंथों में दिखलाई पड़ता है। तंत्र में प्रकृति के साथ शिव अद्वैत दोनों की बात की गई है, परंतु तंत्र दर्शन में शक्ति यानी ईश्वर की शक्ति पर विशेष बल दिया गया है। तंत्र की 3 परंपराएं हैं, शैव आगम या शैव तंत्र, वैष्णव संहिताएं तथा शाक्य तंत्र। आइए जानते हैं शैव आगम क्या चीज़ है। शैव आगमों की 4 विचारधाराएं हैं। नंबर 1, शैव सिद्धांत, तमिल शैव, कश्मीरी शैव दर्शन तथा वीर शैव या लिंगायत शैव दर्शन। भारतीय परंपरा में आगमों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन मंदिरों, प्रतिमाओं, भवनों एवं धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाओं का निर्धारण इनके द्वारा हुआ है। शैव सिद्धांत, प्राचीन तौर पर शैव सिद्धांत के अंतर्गत 28 आगम तथा 150 उपागमों को माना गया है। शैव सिद्धांत के अनुसार सैद्धांतिक रूप से शिव ही केवल चेतन तत्व है और प्रकृति जड़ है। शिव का मूलाधार शक्ति ही है। शक्ति के द्वारा ही बंधन एवं मोक्ष प्राप्त होता है। दूसरा आता है कश्मीरी शैव दर्शन। प्रमुख ग्रंथ शिव सूत्र है। इसमें शिव की प्रतिभिज्ञा के द्वारा ही ज्ञान प्राप्ति को कहा गया है। जगत शिव की अभिव्यक्ति है तथा शिव ही शक्ति के उत्पन्न एवं संभव। इस दर्शन को त्रिक दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि यह शिव शक्ति तथा जीव यानी पशु तीनों के अस्तित्व को स्वीकार करता है, तीनों के अस्तित्व को स्वीकार करता है। उसके बाद आता है वीरशैव दर्शन। वीरशैव दर्शन की प्रमुख लेख वीरशैव है। इस दर्शन का महत्वपूर्ण ग्रंथ वाचानम है, जिससे अभिप्राय है शिव की उक्ति। यह दर्शन पारंपरिक तथा शिव को पूर्णतः समस्त कारक संहारक एवं सृजनकर्ता मानता है। इसमें जातिगत भेदभावों को नहीं माना गया है। इस दर्शन के अंतर्गत गुरु परंपरा को विशेष महत्व है। आगम का मुख्य लक्ष्य क्रिया के ऊपर है, तथापि ज्ञान का भी विवरण यहाँ कम नहीं। वाराह तंत्र के अनुसार आगम इन सातों लक्षणों में समाहित होता है। सृष्टि स्थिति प्रलय देवतार्चन सर्वसाधन पुरुषकरण षटकर्म शांति वशीकरण स्तंभन विद्वेषण उच्चाटन तथा मरण साधन का धनायोग है। महानिर्माण तंत्र के अनुसार कलयुग में प्राणी मेघ तथा अमेघ विचारों से बहुत हीन होते हैं, तथा इन्हीं के कल्याणकर्ता भगवान महेश्वर ने आगमों को उपदेश पार्वती को स्वयं दिए। शैव आगम यानी पशुपत वीर शैव सिद्धांत त्रिकादि द्वैत शक्तिकरण द्वैतित्व अद्वैतित्व दृष्टि से भी इनमें तीन भेद माने जाते हैं। आगमिक पूजा विशुद्ध तथा पवित्र भारतीय। उसके बाद आता है वैष्णव संहिता। वैष्णव संहिता के बारे में मित्रों कहा जा सकता है कि वैष्णव संहिता की दो विचारधाराएं मिलती हैं, एक है वैखानस संहिता तथा दूसरी है पंचातृत संहिता। वैखानस संहिता के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि यह वैष्णव परंपरा के वैखानस विचारधारा है। वैखानस परंपरा प्राथमिक तौर पर तपत एवं साधक का एक परख पारंपरिक रही है। पंचरात्र संहिता से अभिप्राय है पंच निशाओं का तंत्र। पंचरात्र परंपरा प्राचीन तौर पर विश्व के उद्भव सृष्टि की रचना आदि के विवेचन में को समाहित करती है। इसमें सांख्य तथा योग दर्शनों की मान्यताओं का समावेश दिखाई देता है। वैखानस परंपरा की अपेक्षा पंचरात्र परंपरा में अधिक लोक प्रचलन में रही। इसके 108 ग्रंथों के होने को कहा गया है। वैष्णव परंपरा में भक्तिवादी विचारधारा के अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत भी समाहित है। और आखिरी में होता है शाक्य तंत्र। तो दोस्तों ये था तंत्र के बारे में जानकारी, जिससे आप समझ पाएं कि तंत्र क्या चीज़ है। शमशान में बैठना और हड्डियां चटकाना ही सिर्फ तंत्र नहीं, लोगों को परेशान करना तंत्र का कभी कारण नहीं रहा। और आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको कई मंत्रों से भी परिचित कराऊंगा और सारे कर्मों से भी परिचित कराऊंगा। यह जानकारी मैं सिर्फ आपको आपकी ज्ञानवर्धन हेतु दे रहा हूँ। आशा करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति तंत्र का प्रयोग बिना गुरु संबंध के नहीं करेगा। यदि आपने कभी किसी से दीक्षा नहीं ली है या आपका कोई गुरु नहीं है, ऐसी स्थिति में आप तंत्रों के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पर ध्यान रहे, यह आपका स्वयं का चुनाव हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड। तब तक के लिए जय महाकाल।